आस्तिक धीरे से बेड से उठता है और एक टॉवल को अपने कमर पर लपेटे हुए अरुणिमा के पास आने लगता है। वो पीछे से अरुणिमा को अपनी बाहों में भरता है और उसके गर्दन को चूमने लगता है। अरुणिमा मचलते हुए आस्तिक के कैद से निकलना चाहती है और उससे कहती है, नहीं आस्तिक, सुबह सुबह नहीं, देखिए मैं नहा चुकी हूँ। आस्तिक ने भी अपनी आंखों में प्यार लेते हुए अरुणिमा को देखकर कहा, हाँ तो ऐसी कौन सी किताब में लिखा है कि दोबारा नहीं नहाया जा सकता है, चलो ना एक बार फिर से नहाते हैं। अरुणिमा आस्तिक को बाथरूम की तरफ धकेलते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, आप भूल रहे हैं हम राजस्थान में रहते हैं और यहाँ पर कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर पानी भी नहीं मिलता है और आपको पानी बर्बाद करना है। अरुणिमा आस्तिक को बाथरूम के अंदर धकेलकर दरवाज़ा लगा देती है तो आस्तिक अंदर से चिल्लाते हुए कहता है, तुम मुझे उस जगह का नाम बताओ जहाँ पानी नहीं मिलता है, कल तुम्हारे नाम पर वहाँ तालाब बना दूंगा। आस्तिक के लिए कहते ही अरुणिमा हंस पड़ती है। थोड़ी देर बाद आस्तिक अपने क्लोजमेट में खड़ा था और अरुणिमा उसके कपड़े निकाल रही थी। आस्तिक ने अरुणिमा को बाहों से पकड़ते हुए कहा, अरे यार मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों हम ये फजूल की पार्टी वगैरह रख रहे हैं, सबसे मिलो फिर सबसे मुस्कुराते हुए बात करो, शादी की सालगिरह तो हम दोनों की है तो हम दोनों को एक साथ होने चाहिए ना। एक काम करते हैं, आज सारे बच्चों को बाहर भेज देते हैं और बस तुम और मैं रहते ना घर पर। आस्तिक के बच्चे जैसी रिक्वेस्ट पर अरुणिमा हंसने लगती है और उसे हंसता हुआ देखकर आस्तिक उसे अपने गले से लगा लेता है। आस्तिक अरुणिमा को गले से लगाते हुए उसके बालों को सहला रहा था और उसके कानों के पास आते हुए कहता है, आई लव यू अरुणिमा। अरुणिमा भी आस्तिक के सीने पर अपने सर को रगड़ते हुए कहती है, आई लव यू टू आस्तिक। कुछ पलों तक तो उन दोनों के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन फिर उन दोनों के चेहरे के ही भाव एक साथ बदल जाते हैं। आस्तिक सामने लगे शीशे में अपने अक्ष को देखता है और अचानक से उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। आस्तिक अरुणिमा के बालों को सहलाते हुए अपनी आंखों को शैतानी तरीके से घुमाता है और अपने प्रतिबिंब को आईने में देखते हुए कहता है, तुम्हारे शरीर को तोड़कर मुझे कुछ हासिल नहीं होगा अरुणिमा, मज़ा तो तब है जब मैं तुम्हारा दिल तोड़ूंगा। वहीं अरुणिमा के चेहरे पर भी भाव बदल गए थे और उसने आस्तिक के सीने पर अपने सर के दबाव को बनाते हुए अपने मन में कहा, जो आपने मुझे दिया है राजा साहब, उसका हिसाब तो आपको देना ही पड़ेगा। अपने आने वाले फ्यूचर के लिए जब मैं सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगी, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, पर उससे पहले मैं तुम्हारी ऐसी हालत करूंगी जिसकी वजह से तुम कभी किसी और से प्यार करने के लायक नहीं रहोगे। आस्तिक को एक इम्पॉर्टेंट कॉल आ गया था जिसे अटेंड करने के लिए वो कमरे में ही रुक गया और अरुणिमा नीचे आती है। जानवी अरुणिमा को देखती है और उसे गले लगाते हुए कहती है, शादी की पहली सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो भाभी। अरुणिमा भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाती है। पृथ्वी भी अरुणिमा को मुबारकबाद देता है। कीर्ति ने भी अरुणिमा को मुबारकबाद दी, लेकिन अरुणिमा देख पा रही थी कि पिछले कुछ दिनों से कीर्ति थोड़ी सी अजीब बिहेव कर रही है और उसके चेहरे की रंगत भी कुछ कम हो गई है। अरुणिमा जानवी से कहती है, जानवी तुम नाश्ता लगाओ, मैं तब तक मिश्री के कमरे में उसे स्कूल के लिए तैयार करती हूँ। जानवी हाँ में सिर हिलाती है और अरुणिमा मिश्री के कमरे में चली जाती है। मिश्री का कमरा महल के अंदर ही था, वो क्वार्टर में नहीं रहती थी और ना ही अब कोई काम करती थी। अरुणिमा मिश्री के कमरे में जाकर देखती है तो मिश्री स्कूल के लिए तैयार हो गई थी और अपने बालों की चोटियां बना रही थी, लेकिन उसकी किताबें स्टडी टेबल पर फैली हुई थी। अरुणिमा एक एक करके मिश्री की किताबों को उठाकर उसके बैग में डालती हैं और कहती है, मिश्री अपनी मैथ वाली मैडम को कहना कि मुझे फ़ोन पर बात करें, तुम्हारी मैथ्स के मार्क्स को लेकर मुझे उनसे बात करनी है। मिश्री अपने बालों में रिबन लगाते हुए अरुणिमा के पास आती है और कहती है, वो सब तो ठीक है दीदी, लेकिन आपने जीजा जी को कैसे संभाला, आपने ऐसा क्या बोला कि जीजा जी हमें स्कूल भेजने के लिए मान गए हैं और वो भी बड़ी स्कूल में, उसके बाद फिर मुझे महल के अंदर रहने दिया, अब तो मैं घर का कोई काम भी नहीं करती हूँ, आपने ये सब कैसे किया दीदी। अरुणिमा कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसकी एक तिरछी नज़र दरवाजे की तरफ जाती है जहाँ से उसे एक परछाई नज़र आती है। अरुणिमा के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान आ जाती है और वो मिश्री के बालों में रिबन का फूल बनाते हुए कहती है, तुम्हारे जीजा जी ये सब तुम्हारे लिए क्यों नहीं करेंगे, अरे तुम मेरी बहन है और तुम्हें किसने कहा है कि तुम्हारे जीजा जी तुमसे घर का काम करवा रहे थे, अब जब तुम मेरी जिम्मेदारी हो तो तुम्हारे जीजा जी की भी तो जिम्मेदारी हो ना। अब कल को अगर कीर्ति इस घर का कोई काम करेगी तो क्या हम उसे ये कहेंगे कि हम तुमसे घर का काम करवा रहे हैं, अपने घर का काम करने के लिए कोई ऐसा कहता है क्या, और अब हम तुमसे ये सब इसीलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि तुम्हारी दसवीं की परीक्षा है और तुम्हारे जीजा जी चाहते हैं कि तुम अच्छे तरीके से पढ़ लिख कर अपनी परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो। देखो मिश्री, तुम्हें इस बार बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, तुम्हारा एक साल वैसे ही खराब हो गया है, ये मत भूलो कि स्कूल में सब जानते हैं कि तुम्हारे जीजा जी कौन है, इसलिए अगर तुम्हारे नंबर कम आए तो तुम्हारे जीजा जी के सम्मान पर बात आएगी। मिश्री भी मुस्कुराते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं दीदी, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी, मैं जीजा जी के ऊपर कोई बात नहीं आने दूंगी और आप देखना मेरे नंबर पूरे स्कूल में सबसे अच्छे आएंगे और फिर जीजा जी मुझ पर प्राउड फील करेंगे। वहीं दरवाजे की ओर में खड़ा आस्तिक ये सारी बातें सुन रहा था, उसके चेहरे पर भी एक शातिर मुस्कान थी, जैसे कि उसने दोनों बहनों के दिल और दिमाग पर अपने लिए एक अच्छी छवि छोड़ी है।
मिश्री को स्कूल भेजकर अरुणिमा वापस अपने कमरे में आती है। अरुणिमा भी इस वक्त अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही थी, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर शीशे पर जाती है, जहां पर वो अपने अक्ष को देखती है। वो अपनी पथराई आंखों से खुद को देख रही थी और देख रही थी कि कितनी बदल गई है वो। जहां कल तक उसके चेहरे पर एक मासूमियत, एक चंचलता थी, तो वहीं पर अब उसने षड्यंत्र करना सीख लिया था। लेकिन इसी के साथ अरुणिमा को ये याद आता है कि कैसे एक महीने पहले वो आखिरी बार टूटकर बिखर गई थी।